नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता SBI ने कर्जदारों, खासकर खुदरा ग्राहकों से समय पर EMI का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। बैंक ने बताया कि वो मासिक किस्त के भुगतान में चूक वाले संभावित कर्जदारों को चॉकलेट भेज रहा है। बैंक ने बयान में कहा कि भुगतान में चूक की योजना बना रहे कर्जदार बैंक द्वारा याद दिलाने के बाद भी कोई जवाब नहीं देते हैं, इसलिए उनके घर पर बिना उन्हें सूचित किए जाना एक अच्छा विकल्प है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बीच खुदरा ऋण वितरण भी बढ़ रहा है, ऐसे में ये कदम बेहतर कर्ज वसूली के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। SBI का खुदरा ऋण आवंटन जून 2023 तिमाही में 16.46% बढ़कर 12,04,279 करोड़ रुपए हो गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में 10,34,111 करोड़ रुपए था। बैंक का कुल ऋण खाता 13.9% की वृद्धि के साथ 33,03,731 करोड़ रुपए हो गया। NSE तकनीकी गड़बड़ियों या रुकावटों को दूर करने के लिए एक इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस मंच की व्यवस्था करेगा, ताकि कारोबार करने वाले सदस्यों को कोई समस्या ना हो। सेबी ने पिछले साल दिसंबर में शेयर बाजारों और समाशोधन निगम को ट्रेडिंग सदस्यों से जुड़ी प्रणालियों के कारण सेवाओं में व्यवधान होने पर निवेशकों की मदद के लिए एक मंच बनाने के लिए कहा था। नियामक ने उनसे मंच को 1 अक्टूबर तक शुरू करने के लिए कहा था। IRRA मंच अपने निवेशकों के लिए इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग और वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रतिभूति कारोबार का उपयोग करने वाले ट्रेडिंग सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि ये एल्गो ट्रेडिंग और संस्थागत ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। NSE द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार IRRA 3 अक्टूबर 2023 से सभी एक्सचेंजों में ट्रेडिंग सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदिया ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है, जिसके तहत अमृतसर ज़िले के चौगावा खंड में बासमती फसल की ऐसी खेती की गई है जिससे कोई अवशेष उत्पन्न ना हो। अवशेष मुक्त खेती में रसायनों का न्यूनतम या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मंत्री ने कहा कि इस पहल का मकसद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की इच्छा के अनुसार राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना है। चौगावा खंड गुणवत्तापूर्ण बासमती चावल की खेती के लिए पहचाना जाता है। मंत्री ने कहा कि चौगावा खंड में कुल 32,000 हेक्टेयर खेती योग्य क्षेत्र है, इसमें से 28,753 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की जाती है, जिनमें से 25,000 हेक्टेयर पर बासमती की फसल बोई जाती है। भारतीय उद्यमी का नया स्टार्टअप दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित कर रहा है और ये विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली कंपनी है, जो उपभोक्ताओं को अपने अनूठे संवाददात्मक AI सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके नलसाज, बिजली का काम करने वालों और अन्य सेवाओं को बुक करने का विकल्प प्रदान करती है। अनुज गुप्ता का ग्रीन वैन एक सरल व्हाट्सएप इंटरफेस का इस्तेमाल करता है। इसे अमेज़ॉन ऑफ सर्विस की पेशकश के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसका मकसद लोगों के आवश्यक कार्यों को ऑनलाइन बुक करने के तरीके को बदलना है। इसके लिए हाल ही में वित्त कोष चक्र खोला गया। अमेरिका से करीब 5 साल पहले ब्रिटेन में जा बसे गुप्ता को वहां कई तरह की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। स्थानीय शेयर बाजारों में 11 दिन की तेजी के सिलसिले पर सोमवार को ब्रेक लगा और इसमें गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख और अमेरिका संघीय रिजर्व के ब्याज दर की घोषणा करने से पहले निवेशक सतर्क हैं। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 286.6 अंक टूटकर 67,552.03 अंक पर आ गया। NSE निफ्टी 70.7 अंक के नुकसान से 20,121.65 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स में इंफोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, HDFC बैंक, विप्रो और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर नुकसान में थे। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, NTPC और एशियन पेंट्स के शेयर लाभ में थे। अन्य एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, हांगकांग का हैंग सेंग और जापान का निक्की नुकसान में थे, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट लाभ में कारोबार कर रहा था। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने EPFO से कहा कि जब तक मंत्रालय मंजूरी ना दे तब तक ब्याज दर सार्वजनिक ना करें। EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड को मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू होने वाली ब्याज दर की सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं करने के लिए कहा गया है। ये फैसला वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई की शुरुआत में श्रम मंत्रालय को एक पत्र में EPFO के मुद्दे को सामने लाने के बाद आया है। दरअसल 6 करोड़ ग्राहकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना का प्रबंधन करने वाला EPFO 197.72 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया है। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में इसका सरप्लस 449.34 करोड़ रुपए था। इसे ब्याज दर घोषणा तंत्र में हस्तक्षेप करने और संशोधित करने के एक कारण के रूप में बताया गया था। घाटे के बारे में बताते हुए वित्त मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया कि उच्च EPF ब्याज दरों पर ध्यान देने की जरूरत है। निर्माता जीप के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन एक केंद्र बिंदु है और ये घरेलू बाजार के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। वाहन समूह स्टेलांटिस का हिस्सा जीप इंडिया ने कहा कि कंपनी ने अगले 3 वर्षों में अपनी कॉम्पैक्ट SUV जीप कंपास में 90% से अधिक स्थानीयकरण का लक्ष्य रख रही है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।